Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पशेमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टो वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रकरण की चर्चा हम लोग प्रवचन सत्र में कर रहे हैं। इस प्रथम प्रकरण के नवम कंडिका का विचार कल प्रारंभ हुआ था। आचार्य पिपलाद जी से ऋषि कबंधी ने प्रश्न किया, कुतो हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात कबंधी का प्रश्न है कि यह 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात किससे उत्पन्न होते हैं जिसमें प्रधान मनुष्य है। तो इसका उत्तर आचार्य पिपलाद जी दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि मूल में ईश्वर के द्वारा सृष्ट जो प्रजापति हैं हिरण्यगर्भ, वे ब्राह्मणादि प्रजा का निष्पादन करने के लिए एक मिथुन को उत्पन्न करते हैं। वो मिथुन है रई प्राण शब्दित चंद्र और आदित्य, और इसी से फिर संवत्सरादि द्वारा प्रजा का निर्माण हिरण्यगर्भ करते हैं, प्रजापति करते हैं। तो ये रई प्राणात्मक मिथुन से कैसे प्रजा का निर्माण हिरण्यगर्भ करेंगे, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये कहा गया कि ये चंद्रमा तथा आदित्य रूप जो मिथुनात्मक प्रजापति हैं, यह संवत्सरात्मक काल का पहले निष्पादन करता है, और रई प्राणात्मक मिथुन का कार्य संवत्सर होने से उसे भी रई प्राणात्मक प्रजापति रूप कहा गया, संवत्सरो वै प्रजापति इससे। तो रई प्राण का कार्य संवत्सर कैसे होगा इसे समझाते हुए बताया गया कि तिथियों का समूह तथा दिन रात का समूह ही तो संवत्सर है, और तिथियों का निर्वर्तन चंद्रमा से होता है और दिन रात का निष्पादन होता है सूर्य से, और चंद्रमा तथा सूर्य ही तो मिथुनात्मक प्रजापति है। इस प्रकार चंद्र और आदित्यात्मक मिथुन से यह संवत्सर जिन तिथि तथा अहोरात्र का समूह रूप है उनका निर्वर्तन होने से माना जाता है संवत्सर को मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य, और कार्य अपने कारण से अभिन्न होने से कारणात्मक कहा जाता है, यानी संवत्सर भी मिथुनात्मक प्रजापति रूप है। केवल तिथि का समूह रूप संवत्सर होने से या दिन रात्रि का समूह रूप संवत्सर होने मात्र से सूर्य तथा चंद्रमा से निर्वर्त्य हैं ऐसी बात नहीं, अपितु संवत्सरात्मक काल का जो अयन द्वयात्मक भाग है, दो भाग है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायन, ये भी चंद्रमा तथा आदित्य से ही निर्वर्तित होते हैं। इसलिए भी अयन द्वयात्मक संवत्सर को मिथुनात्मक प्रजापति रूप कहा जाता है। इसे दिखाने के लिए कहा कि तस्य अयने द्वे दक्षिणंच उत्तरंच, ये संवत्सर के दो अयन हैं दक्षिण तथा उत्तर नामक, और इन दक्षिणायन तथा उत्तरायन से गमन करते हुए चंद्र सूर्य निर्वर्तन करते हैं, ये कर्मी तथा उपासकों के फल का निर्वर्तन करते का अर्थ है निष्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसलिए दक्षिणायन तथा उत्तरायन को माना जाता है सूर्य तथा चंद्रमा के गति निमित्तक, इनकी गति इन मार्गों से हो रही है इसलिए इनको दक्षिणायन उत्तरायन कहा जा रहा है सूर्य चंद्रमा के गमन निमित्तक होने से, और तदात्मक ही संवत्सर है इसलिए संवत्सर मिथुनात्मक प्रजापति रूप है। ये नवम कंडी मक्का के प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया। अब ये कैसे आदित्य और चंद्रमा प्राणियों के कर्म फल का निष्पादन करते हैं उत्तरायण मार्ग से जाकर के तथा दक्षिणायन मार्ग से जाकर के, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नवम कंडिकास्थ अवशिष्ट वाक्य है, तद ये हवई तद इष्टापूर्ते दकृतम इति उपासते इत्यादि। इसमें बताया गया कि वर्णाश्रम विभागों में विभक्त मनुष्यों में से जो मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम विहित इष्ट पूर्त दत्त नामक तीनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो वे उन कर्मों का फल भोगने के लिए अपने अपने वर्णाश्रम विहित इष्ट पूर्त दत्त कर्म जो जीवन भर किया है उसका फलोपभोग करने के लिए चले जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक में यानी स्वर्ग में। इसे ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते इस वाक्य से कहा गया, ते यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए जिन्होंने केवल शास्त्र विहित इष्ट पूर्त दत्त नामक कर्म का ही अनुष्ठान किया है, उपासना नहीं की है, केवल कर्मी है, वे दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाकर के चांद्रमस लोक शब्दित देवता शरीर को प्राप्त करते हैं। लोक शब्द का अर्थ है शरीर। लोक्यन्ते कर्म फलानि अनुभूयन्ते अस्मिन् इति लोकः, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ होता है अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फलोपभोग जीवात्मा जहां रह करके करती है। वह तो शरीर में रह करके अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगती है जीवात्मा, इसलिए जीवात्मा का क्या नाम शरीर को कहा जाता है लोक। भोगायतन इसलिए भी कहते हैं यदि शरीर का लक्षण करते हुए यद भोगायतनम तदेव शरीरम। भोगायतन का अर्थ है भोग का आश्रय और भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख का अनुभव। सुख दुख है कर्म का फल, तो कर्म का फल भूत सुख दुख का अनुभव जीवात्मा जहां रह करके करता है वह लोक है, शरीर है। और शरीर तो कई हैं, पृथ्वी लोक निवासी भी है, तो इसलिए देवता शरीर को दिखाने के लिए चांद्रमसम ये शरीर का विशेषण हुआ। चांद्रमसम लोकम का अर्थ निकलेगा देवता शरीर, देवता शरीर चांद्रमस लोक है देवता शरीर। उस देवता शरीर को प्राप्त करते हैं अभिजयंते का अर्थ है कौन, जो मनुष्य शरीर में रहते हुए केवल शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते रहे, फिर मनुष्य शरीर का प्रारब्ध समाप्त हुआ और शरीर छोड़ते समय जो जीवन भर किए हुए इष्ट पूर्त दत्त कर्म है वे ही फल देने के लिए भावी शरीर के प्रारब्ध बन करके सामने आए, का मतलब उसके स्मरण में रहे, तो फिर वे कर्म उसे ले जाते हैं उन कर्मों का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है उस शरीर में। तो इष्ट पूर्त दत्त जो शास्त्र विहित पुण्य कर्म है उनका फल है मनुष्य शरीर से भी न भोगा जा सके ऐसा उत्कृष्ट सुख, दिव्य सुख, स्वर्गीय सुख। उसके लिए फिर दिव्य शरीर चाहिए, स्वर्गीय शरीर चाहिए, तो स्वर्गीय शरीर के प्रति यह कर्म ले जाता है प्रारब्ध बन करके। तो देवता वहां पर आतिवाहिक देवता लेने के लिए आ जाते हैं, जब यजमान शरीर छूटता है, धर्मात्मा का शरीर छूटता है पुण्यात्मा का, तो उसे ले जाने के लिए देवदूत आते हैं, उनका नाम उपनिषदों में बताया गया धूम रात्रि कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता आदि रूप से, जो दक्षिणायन मार्ग में नियुक्त देवता है वो आकर के स्वर्ग में ले जाते हैं और वहां जाकर के ये जो जाते समय साथ में ले गया था यहां से भूत सूक्ष्म, वही फिर देवता शरीर के रूप में परिणत होता है, बीज साथ में जाता है हमेशा। वो प्रत्येक जीवात्मा का मोक्ष होने तक जैसे सूक्ष्म शरीर वही रहता है, ऐसे ये भूत सूक्ष्म भी वही रहता है। हर बार जब स्थूल शरीर छोड़ता है तो उस स्थूल शरीर से वो सार तत्व निकल करके उसी से युक्त होकर के जीवात्मा उस शरीर से निकलता है, दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। और दूसरे शरीर में जाता क्या है, वो सार तत्व ही दूसरे शरीर का रूप धारण करता है।
हाँ? करता है।
हाँ वो बताया है ऐसे तो स्वर्ग से आता है जब मानव बनने के लिए, तो उसकी अनिश्चितता बताई गई है, लेकिन बाकी में बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो वो देवता शरीर बन गया, सूक्ष्म शरीर अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण रजोगुण से बना हुआ है। वो है पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया, पांच प्राण, मन बुद्धि का समूह, वो सूक्ष्म शरीर। और भूत सूक्ष्म है, स्थूल भूतों का ही बहुत सूक्ष्म अंश जो स्थूल शरीर का कारण बनता है, उसी से स्थूल शरीर बनते हैं। वो स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्म अंश है, वो स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों का बीज माना जाता है। वह प्रत्येक जीवात्मा का अपना अपना अलग अलग है, जैसे सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, वह एक स्थूल शरीर से निकलते समय सूक्ष्म शरीर जैसे जाता है, ऐसा भूत सूक्ष्म भी जाता है। भूत सूक्ष्म आश्रित होकर के ही सूक्ष्म शरीर जाता है, नहीं तो सूक्ष्म शरीर में कोई आवागमन नहीं हो पाता बिना स्थूल के आधार के। और वो जा रहा है सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़कर, तो उसे भी कोई न कोई स्थूल आधार चाहिए, वो स्थूल आधार है भूत सूक्ष्म। और वो इतना सूक्ष्म है कि आंख से या यंत्र से पकड़ में नहीं आता, स्थूल भूतों का अंश होने पर भी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी से निकलता है और जाता है। उस समय कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का चित्र खींचने वाले कैमरे लगा लिए जाए, मरते समय वो जीवात्मा का निकलने वाले शरीर से चित्र खींचने के लिए तो नहीं खींच पाता। अभी वो वैसा कैमरा नहीं बन पाया है। जो भूत सूक्ष्म, जो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, उसका भी चित्र खींच सके, उसे पकड़ सके, वो पकड़ में आ जाए तो जाने वाले जीवात्मा को फिर पकड़ना सरल हो जाए, फिर पकड़ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पकड़ में आ सकते। उसे वो दक्षिणायन मार्ग में नियुक्त देवता केवल कर्मी जो पुण्यात्मा है उसे स्वर्ग ले जाते हैं। वहां वह चांद्रमस लोक को प्राप्त करता है, का अर्थ है देवता शरीर को प्राप्त करता है, उसका भूत सूक्ष्म ही देवता बनकर के अभिव्यक्त होता है। फिर वहां वो रहता है कब तक, जब तक उसने मनुष्य शरीर में रहते हुए इष्ट पूर्त दत्त कर्म जो किए थे उनका पूरा फलोपभोग उस शरीर से नहीं होता, तब तक रहता है। और जिस दिन उस देवता शरीर से होने वाले प्रारब्ध कर्मों का फल पूरा हो जाता है, तो उस दिन फिर वहां के जो व्यवस्थापक हैं स्वर्ग के, वो लोग सूचना दे देते हैं उसे कि तुम्हें जाना है, यहां रहने का जो निमित्तभूत प्रारब्ध था वो समाप्त हो गया। और ये सुनते ही उसका शरीर पानी पानी हो जाता है, बहुत पसीना हो जाता है, गर्मी हो जाती है उसे, और कितना भी पसीना हो जाए हम लोगों को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहने पर भी शरीर पूरा तो पानी नहीं होता ना, लेकिन देवता का शरीर बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। अंतिम संस्कार करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ अवशिष्ट रहता तो वहां मुक्तिधाम भी होता, ऐसा कोई मुक्तिधाम नहीं है, स्मशान भूमि वहां नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं होता देवताओं का, क्योंकि वहां पर स्थूल शरीर कुछ शेष बचता ही नहीं है, पानी पानी हो जाता है और बह करके फिर पर्जन्य लोक में आकर के वो गिर जाता है। और वहां से पंचाग्नि विद्या में बताया गया कि बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर गिर जाता है। कौन? वही जीवात्मा, उसका भूत सूक्ष्म उस पानी के साथ रहता है, वो पूरा जीवात्मा तो रहेगा, स्थूल शरीर का मात्र पानी पानी हुआ है और वो पर्जन्य में आकर के पानी के साथ मिल करके जो पानी बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर गिर रहा है तो उतनी ऊंचाई से वो जीवात्मा भी गिर जाता है। अभी तक स्वर्ग में जो स्वर्गीय शरीर से सुख का अनुभव कर रहा था वही जीवात्मा आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी पर गिरने के बाद वो कहीं उस पानी के साथ बहता है और कभी कभी पृथ्वी में ही जो पानी वो सूख जाता है तो ये जीवात्मा भी वहीं पर सूख जाता है। फिर कहीं चावल दाल जो बोए हुए हैं, गेहूं चावल, उनके साथ इसका संबंध होता है उस पानी के माध्यम से। वहां पर एक जीव, वो भी तो एक योनि है ना, गेहूं चावल बोया और वो अंकुरित हुआ और अंकुरित होने के बाद एक शरीर बना, पेड़ गेहूं का चावल का पौधा बनता है ना, वो है जैसा हमारा ये मनुष्य शरीर है ऐसा एक 84 लाख प्रकार के शरीरों में से शरीर ही, उसे औषधि कहा जाता है। औषधि कहते हैं एक बार फल करके, फल दे करके जो पेड़ समाप्त होता है उसे औषधि कहते हैं। तो वो जो औषधि है गेहूं धान आदि के पेड़ एक बार फलते हैं फिर सूख जाते हैं, समाप्त हो जाता है, उसमें भी एक जीवात्मा होता है। वह उतने समय के लिए उस शरीर में आत्माभिमान करके सुख दुख भोगता है, उस गेहूं धान आदि के पौधे रूप शरीर से। और ये जो स्वर्ग से आया हुआ देवता था, जीव देवता बना स्वर्ग में, वो भी उसी जीवात्मा के शरीर के साथ संश्लिष्ट होकर के मूर्छित अवस्था में रहता है, ऐसा वर्णन छांदो के उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आता है। उन्हें कहा जाता है अनुसयी जीव। अनुसयी का अर्थ है, अनुसय कहते हैं संबंध को और अनुसयी कहते हैं संबंधी। तो जो दूसरे जीवों का शरीर है, गेहूं चावल के पेड़ के रूप में शरीर अन्य जीवों का है और उन्हीं अन्य जीवों के शरीर के साथ संबंधित बनकर के रह गए, लेकिन वहां उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, ऐसे पड़े रहेंगे वहां पर। और फिर वह गेहूं चावल पक गए और बाजार में आए, फिर खरीद लिया माता पिता ने, फिर पका करके उसे खा लिया, तो उसके साथ ये स्वर्ग से आया हुआ जीव भी रहता है। जब तवे पे रोटी सिकती है तो उस समय वो तवे पे भी जीवात्मा रहता है, गरम गरम तवे पे भी, और फिर आंच में सेकते हैं तो आंच में भी जाता है, लेकिन मूर्छित होने के कारण उसे सुख दुख नहीं होता। सुख दुख भोगने के लिए तो शरीर चाहिए ना, अभी शरीर नहीं है, वो अनुसयी जीव है, अन्न से संबंधित होता है। फिर अन्न के माध्यम से माता पिता जब खा लेते हैं गेहूं चावल आदि के माध्यम से तो उनके शरीर से संबंधित हो जाता है। फिर वो पाचन क्रिया के माध्यम से अन्न रसादि क्रम से सप्तम धातु रूप बन जाता है और फिर माता के गर्भ में जा करके वही जीवात्मा जो स्वर्ग से आया था उसका जो प्रारब्ध है, मानव बनने का प्रारब्ध है तो मनुष्य खा लेता है, और फिर जिसके घर में उसे जन्म लेना है उसके वो माता पिता खा लेते हैं और फिर माता के गर्भ में जाकर के मनुष्य का शरीर बनना शुरू हो जाता है। उसका जो भूत सूक्ष्म है वह वहां पर विकसित होना शुरू कर देता है जहां उसे जन्म लेना है। और यदि मनुष्य से अतिरिक्त योनि में जाना है, कुत्ता बनना है, तो बनेगी तो रोटी और उस रोटी के साथ उसका संबंध होगा। लेकिन कई एक घरों में नियम होता है कि ये गाय के लिए रोटी, ये कुत्ते के लिए रोटी, तो ये फलाने के लिए रोटी, तो उस रोटी के माध्यम से कुत्ते के पेट में चला जाएगा और वहां भी वो उसकी जो माता है उसमें वो भूत सूक्ष्म कुत्ते के शरीर के रूप में बनना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ हाँ, तो यदि वहां का उसका प्रारब्ध बना है तो वहां जाएगा। उसमें लिखा है इमं लोकम हीनतरम वा प्रविशन्ति अनुविशन्ति। कहते इमं लोकम यानी ये मनुष्य लोक, स्वर्ग से आए हुए सभी के सभी जीव निश्चित रूप से मनुष्य ही बनेंगे, ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता। यदि मानव शरीर से भोगने योग्य प्रारब्ध उनका देवता शरीर छोड़ते समय बन गया, जो अवशिष्ट कर्म है, देवता शरीर का प्रारब्ध तो वहीं भोग करके समाप्त कर लिया और संचित कर्म जो है उनका, उन संचित कर्मों में से देवता शरीर